کلاس کا ماحول تو وہ نہیں ہے کہ ہم کلاس شروع کریں پھر پلے کریں. آپ لوگ ایک دو منٹ کے اندر پلیز کھانا پینا چھوڑ دیں. آپ چاہیں تو میں بھی پھر اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہوں کوئی بھی چیز, پانی وغیرہ. لیکن اگر آپ چائے پانی پئیں گے کلاس کے دوران نہیں جا سکے گا نا. اور یہ خالی جگہوں کو فل اپ کریں, کوشش کیا کریں کہ بریک کے بعد پوری فوری سے فوری آ جائیں. چلیں جتنے ساتھی ہیں وہ مل کے شروع سے پڑھیں 189 سے, سب مل کے خود پڑھیں ٹھیک ہے. اور جب فیل ہوگا کہ پوری کلاس ریڈی ہے پھر ہم شروع کریں گے. آن لائن والے بھی اپنی جگہ پہ پڑھیں پلیز.
Thank you.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیے شروع کرتے ہیں. ادھر دو تین لوگ ہیں, اگر کوئی نہیں ہے لوگ چلے گئے تو آپ لوگ پیچھے سے آگے آ جائیے. شروع کرتے ہیں تفسیر انشاء اللہ تعالی. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ کریں گے, جس کو آپ مرکزی خیال بھی کہہ سکتے ہیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم سب کچھ رکوع پہلے لیس البر ان تولوا وجوہکم کی صورت میں دیکھ چکے کہ دین اسلام کے مختلف رخ ہوتے ہیں. ایک اینگل عبادات سے تعلق رکھتا ہے, عبادات, معاملات, اخلاقیات, دین کے رستے میں قربانی, انفاق فی سبیل اللہ. یہ مختلف موضوعات ہیں جو ہمیں قرآن پاک میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھتے ہیں. آج کے سبق کو اگر آپ ایک لفظ میں سمیٹیں تو آج کا سبق ہمیں یہ بتائے گا کہ کیا اسلام شدت پسند مذہب ہے, کیا مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں, کیا اسلام ٹیررزم کا نام ہے, اور اسلام کا کیا مزاج ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیں تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. اس میں سب سے پہلے چاند کی بات آ رہی ہے, چاند کے گھٹنے بڑھنے کے ساتھ حج کی بات ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ اقسام بر میں ہم ابھی تک رمضان کے روزوں کی بات کر چکے, وصیت کا قانون پڑھ چکے, قصاص کی بات پڑھ چکے. یہاں سے اب آگے والے دو تین رکوع تک حج کا تذکرہ آنے والا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں, اور وہ کیا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا, تمہیں ہم نے امت وسط بنایا. اگر حقیقت میں تم امت مسلمہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں خود کو ڈسپلن کرنا پڑے گا, پہلے تمہیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی, پہلے تمہیں اس کائنات کے ساتھ خود کو سنکنائز کرنا پڑے گا. چاند کی بات ہے شروع میں, ہم ساتھ ساتھ لے کے آیت کو پھر چلیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں سے بہت کچھ ہے. آج کا سبق اپنے اندر آپ بہت کچھ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. آئیے آیت کے ساتھ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسلونک عن الاحلاء, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. کون سوال کرتے تھے؟ لکھیے صحابہ کرام. کہاں سے مراد ادھر صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام نے پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-11 سوال کیے, اور وہ ساری آیات یا سلونکہ سے شروع ہوتی ہیں. ایک آدھی آیت جو ہے وہ مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں ہے, جو کہ یا سلونکہ سے شروع ہوتی ہے. ہمارے لیے اس میں ایک چھوٹی سی بات غور کی, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہر وقت ان کے پاس ہوتے تھے, آپ کے ساتھ رہتے تھے, آپ کے معاملات تھے, لیکن صحابہ کا مزاج صرف سوال پوچھنے والا نہیں تھا. آج ہمارا مزاج کہ جہاں کوئی بندہ دکھ جائے دین والا, اس کے نام کے ساتھ لفظ دین ہو, نہیں آتا کہ ہم اس سے کچھ علم لے لیں, ہم اس سے کچھ تقویٰ لے لیں, ہم اس سے کچھ اخلاق سیکھ لیں, ہم اس سے کوئی تربیت پا لیں. ہم سب سے جھٹ سے وہ ایک سوال پوچھنا تھا. یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ؟ آج امت مسلمہ کا مزاج سوالوں والا ہے. اگر صحابہ کرام بھی ایسے ہی ہوتے تو قرآن پاک میں یسلونک سے شروع ہونے والی آیتوں کی تعداد انگنت ہوتی. 10-11 آیتیں, ایک پوری بک ہے اس پہ, یسلونک سے ہی شروع ہوتی ہے. اس میں انہوں نے وہ تمام آیتیں جمع کی ہیں کہ جو کہ سوال سے شروع ہوتی ہیں. سوال پوچھنا چاہیے, لیکن پہلے علم حاصل کر کے پھر سوال پوچھا جائے تو فائدہ ہوتا ہے, اور بہت سارے سوالات کا جواب آگے آ ہی رہا ہوتا ہے. خیر, سوال کیا تھا لوگوں کا؟ انل اہلتی, نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا تھا کہ یہ چاند کبھی گھٹتا ہے, کبھی چاند بڑھتا ہے, یہ کیسا ہوتا ہے؟ آج میں اور آپ تو وحی کی روشنی میں کائنات کو دیکھ ہی رہے ہیں نا. سب چیزوں کی حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ دکھتی جا رہی ہے, لیکن صحابہ کرام ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ جن کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جب کوئی نئی بات ان کے سامنے آتی तो इस्लाम की रोशनी में उसकी हकीकत मालूम करना चाहते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक जिंदगी हमारी इस कुरान के साथ जुड़ने से पहले थी, हम इस्लाम पे नहीं थे, या इस्लाम पे होने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं था, तो हम चीजों पे गौर नहीं करते थे। लेकिन क्या अब आपको अपने अंदर ये चीज महसूस हो रही है, गौर और फिक्र की आदत, तदब्बुर? तो फिर दिल चाहते लगता है कि जल्दी से अभी हमें इसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिल जाए। यही चीज लोगों को माइल करती है सवाल करने में। कोई बुरी बात नहीं होती सवाल करना, लेकिन जब नया नया दीन जिंदगी में आता है तो बहुत सारे सवाल उभरते हैं जहनों में। तो उन्होंने सोचा कि ये चांद कभी छोटा सा है, कभी बड़ा सा, कभी गोल हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, दिस एंड दैट। तो उन्होंने आके अल्लाह के नबी से कहा कि ये बताइए कि ये चांद क्या है। आज के दौर में लोग होते हैं किसी साइंटिस्ट के पास जाके पूछते हैं, किसी मशीन के जरिए चेक करते हैं कि इसकी असल हकीकत क्या है, लेकिन सहाबा के पास सारी मालूमात, जिनका दुनिया के मामला से ताल्लुक था या आखरत के ताल्लुक था, वो अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। तो आज हमें भी इसमें एक छोटी सी बात अपने अमल की मिलती है, और वो क्या है कि इल्म की हिर्स होनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि दीन का इल्म, जिसको आप आखरत के लिए कहते हैं, बल्कि दुनियावी इल्म की बात है। असल में तो सहाबा का ये सवाल साइंस से मुतल्लिक है कि ये बताइए कि ये चांद कैसा है, और ये सवाल उसके जहन में उभरते हैं जो गौर व फिक्र करता है। सूरत आले इमरान की आखिरी आयतें, और इससे पीछे आपने आयत 20 की पहली आयत, इन्ना फी खल्क़ समावाती व इख्तिलाफ़ लैली व नहार, में देखा कि अक्लमंद लोगों की ये सिफत है कि वो कायनात के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं ये कैसे। और सहाबा किराम ऐसे ही थे, वो बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं थे। सवाल पूछने के साथ ये भी पता चलता है कि वो खुद सोचा भी करते थे। और देखा जाए तो अंधेरी रात में एक चमकता हुआ चांद, कभी इतना, कभी इतना, इतना, ये कोई मामूली बात है। हम तो शुरू से चुके देखते आए, और चंदा मामू दूर के, और हमेशा चांद को मामू ही कहते हैं, कभी चंदा चाचू कोई नहीं कहता है। सब अच्छे रिश्ते ननिहाली रिश्ते, और बुरे रिश्ते ददियाल के रिश्ते। हाँ, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि ये आखिर चांद क्या है। इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो इधर बदलता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, तो बात तो हैरत करते है। साहबा का सवाल असल में ये था कि वो कौन सी हस्ती है जो इतने बड़े चांद को इतने मुख्तलिफ कट्स के साथ दिखाती है। कभी आपने कोई तरशा हुआ हीरा देखा हो ना, उसकी भी इतनी शेप्स नहीं बन सकती जो चांद की 28 दिनों में बन जाती है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि कौन है ये जो चांदों के साथ मामला करता है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, कुल, ए नबी, आप इनको कह दीजिए, हिया, ये हिया से यहाँ क्या मुराद है, चांद, क्योंकि अरबी में हिल्ला का लफ्ज देखिए ता की वजह से मुअन्नस है, तो हु होता तो मुजक्कर था, हिया है तो मुअन्नस है, फीमेल है, फेमिनिन, क्यों, क्योंकि अल्लाह हिल्ला का लफ्ज मुअन्नस है। समझ आए तो समझे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। काहिया मवाकीतु लिन्नास, ये लोगों को वक्त बताने का पैमाना है। चांद के जरिए से लोगों को वक्त पता चलते हैं, और साथ ही साथ वल हज्जी, हज के औकात मुकरर करने का भी ये जरिया है। कैसे, आप देखिए, अल्लाह सुबहाना ताला ने आसमान पर एक कैलेंडर लटकाया हुआ है। ये चांद क्या है, कैलेंडर है। हिलाल को देखे तो पता चल जाता है कि आज चांद की पहली तारीख हो गई। कुछ दिन के बाद जब बिल्कुल आधा कटा हुआ देखे तो पता चल जाता है कि एक हफ्ता गुजर गया। फिर कुछ दिन के बाद जब उस आधे हिस्से को बिल्कुल फिर इस तरह से पूरे के पूरे स्फीयर में देखें, जिसको फुल मून कहते हैं, तो पता चल जाता है कि 2 हफ्ते हो गए। फिर कुछ दिन के बाद आप उस पूरे चांद को फिर कटते कटते एक हिस्से से आधा कटा हुआ देखते हैं, तो आप कहते हैं कि 3 वीक हो गए। और जब पूरे का पूरा चांद कट के बिल्कुल बोले कल अर्जुन अल कदीम, सूरत यासीन में आता है कि चांद की इस खजूर की पतली सी शाख होता है, तो इंसान समझ जाता है कि ये 1 महीना हो गया। आज हमारे हाथों में घड़ियां, हमारे सेलफोन्स में घड़ियां, हमारी दीवारों पे घड़ियां, हर जगह घड़ियां हैं। ये दुनिया तो उन लोगों की भी है जिनके पास आज भी कोई दुनियावी तरक्की नहीं है, और उस दौर में जहां वक्त देखने का कोई आला ही नहीं था। आज भी जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, सूरज के साए से वक्त बता देते हैं कि इस वक्त ये वक्त होगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि एक यूनिवर्सल कैलेंडर लगा हुआ है इस दुनिया ते बढ़ते लोगों को वक्त बता रहा है। और खास तौर पे वक्त मालूम करने में जो अहम बात थी वो हज की थी। यहां आप जरा पिछली आयतों के साथ रफ नोट कीजिएगा, पीछे रोजे की बात हुई ना, सौम, अब हज की बात हो गई और साथ ही आज ही के सबक में हज के साथ किताल की बात आ रही है। बजहर लग रहा है बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन अगर आप गौर करें ना तो समझिए इन आयतों को वहां जहां पे ये नाजिल हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ चुके हैं, मदीना में आने के बाद वो नमाज पढ़ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, मदीना में पढ़ेंगे। रोजों का महीना आएगा, रोजे भी रख सकते हैं, ज़कात देनी पड़ेगी देगी, लेकिन हज के लिए उनको मक्का मुकरमा जाना पड़ता और उस वक्त मक्का मुकरमा मुशरिकीन के कब्जे में था। बात वैसे मुसलमानों को इजाजत ही नहीं थी उधर जाने की, हालांकि घर उनका था। अब जब उधर हज के लिए जाना है या मुसलमानों को मक्का में जाना है तो उसके लिए किताल की जरूरत पेश आनी थी, इसलिए यहां आप देखेंगे किताल की बात आएगी। और किताल के लिए सब्र की बहुत जरूरत है, इसलिए पहले रोजे की बात कर दी कि अपने घोड़ों को रोजे रखाने की बजाय खुद रखो, सब्र पैदा होगा। फिर अगर मौका बने तो मुशरिकीन से लड़ना पड़े तो किताल करो, और उस किताल के बदल के नतीजे में खाना काबा को आजाद करवाओ और उसका हज करो। अब आपका माइंड, लेकिन अगर सीरा आप लोगों ने पढ़ी है तो आप 20 साल, 23 ईयर्स, नब्बी जिंदगी, टोटल 63 ईयर्स की नहीं बात करें, पूरी नब्बी जिंदगी में आपने सिर्फ एक हज किया। ये बात तो बहुत दफा सुनी है ना, आज उसकी वजह मालूम कर लें। मक्का में थे 13 साल, उस वक्त हज का हुक्म की कोई सेंस ही नहीं बनती थी, सारा तो बुतों से भरा हुआ था, 360 बुत थे वहां। दूसरी बात है कि अभी मुसलमान इतने ज्यादा तकलीफ में थे, करें क्या। तीसरी बात आपको पता चले कि इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयतों में आप पढ़ेंगे और सूरत तौबा में कि मुश्रिकीन ने मक्का भी हज करते थे, लेकिन उन्होंने हज की शक्ल क्या बना दी थी, बस आज के दौर का कोई मेला ठेला, जाते खाते पीते स्टॉल लगाते चीजें बेचते, अपने बाप दादा के किस्से कहानियां नात गोई शेर मुकाबले करते कराते, ना बीच में अल्लाह था ना अल्लाह की मोहब्बत थी। बिल्कुल उनके यहाँ हज एक तिजारती मेला बन चुका था, मनी मैटर था। अब जब इस तरह की जगह पे जहां लोग पहले ही रूह के बगैर नेकियां कर रहे हो, स्पिरिटलेस डीड्स, तो मुसलमान जाके हज कर लेते तो वो सरत नहीं आना था, इसलिए पूरे 13 साल में कोई हज नहीं हुआ। मक्की दौर के बिल्कुल आखिरी दौर में मेराज का वाक्या पेश आया, वहां नमाज फर्ज हुई, आप नमाजें पढ़ो इस तरफ, बाकी तो पढ़ते ही थे पहले, लेकिन असल जो आज की फॉर्म है। मदीना में आए, अभी आपने पीछे पढ़ा 2 हिजरी में रोजे फर्ज हो गए, हज कब पहला किया, 8 हिजरी में, मक्का फतह होने के बाद सन 9 हिजरी में पहला हज हुआ। बात वैसे कितने साल हुए, 13 और 9, आप लगा ली 21 साल आ चुके हैं इस्लाम को दुनिया में आए हुए, फिर अल्लाह के नबी एक ही हज करते हैं और उस हज के एक ही साल 9 गुजरा तो 10 के बाद आपकी डेथ हो गई। हज्जतुल विदा के कुछ महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ। सन 9 हिजरी में मुसलमानों ने अपने तरीके से हज किया था, अल्लाह के नबी ने 10 हिजरी में किया था और उसके 3-4 महीने के बाद आपकी, बल्कि रबी अव्वल लगा ले जिलहज के बाद, तो 2-2.5 महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ। तो ये वो हालात थे जहां ये आयतें नाजिल हो रही थी। अरबों में हज के नाते से बहुत सारी बिदात थी। अब अगली आयत में उसका जिक्र है कि करते हज थे अपने जोम में, वो हज के लिए निकलते थे, लेकिन हज के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा बाप दादा के नाम पर तब्दीलियां कर ली थी कि क्या करते थे, पहले समझ लें तो फिर आयत के अंदर भी आ जाएगा कि जब हज के लिए निकलते हैं। अब आप इमेजिनेशन में लाएं, हमारे यहाँ भी जब लोग हज के लिए निकलते हैं लोग स्पेशल मिलने जाते हैं, फूल डालो पत्तियां डालो बादाम दो इनको तोहफे दो ताकि ये भी कुछ लेके आए, हर चक्कर में इनको याद ही आता रहे किसने क्या दिया था उसको क्या देना है, उनको अल्लाह से ज्यादा हम याद आते रहे, चलो तोहफा दे दो ताकि इसी बहाने वो हमें याद करें। हज कोई करके आता है कितने तपाक से लोग उसको मिलने जाते हैं, कभी सोचा आपने, फूलों की पत्तियां जितनी उन दिनों में हमारे मुल्कों के एयरपोर्ट्स पे गिरी होती हैं, आपने कभी अंदाजा किया है कि कितना, और उसकी जगह कितने हादसे हो सकते हैं। हाजी को लोग जाते हैं लेने बड़े शौक से, किसी काम की चीज पे नहीं लाते, आप सोचिए कि हज के लिए जो आया है, बहुत अच्छी बात है हज किया, आप सिला रहमी के लिए जाएं, रिश्तेदारी के लिए जाएं, कोई गुनाह नहीं ना फतवा, लेकिन सिर्फ मेंटल ब्लॉकेज की बात करती हूँ कि बाज दफा शैतान हमसे वो नेकियां करवा देता है कि जिन नेकियों के अंदर हमारा कोई सदका जारिया नहीं बन रहा होता, बस ठीक है कर रहे हैं, या वो मौशरत के नाम पे होती है, या खानदान के नाम पे, या रस्म के नाम पे होती है, लेकिन जिस नेकी में एक हकीकी तौर पे हमारा फायदा होना होता है, शैतान कभी उसकी तरफ ख्याल ही नहीं डालता, कहते नहीं ये काम नहीं हम कर सकते, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें वो पंप एंड श्योर ग्लैमर नहीं होता। मिसाल है कि हज के लिए करने वालों को कोई ले जाएगा, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है उसको कोई नहीं लेने जाता, सोचने की बात है ना, कोई रोजा रखता है तो उसको नहीं कोई कहता चलो इसने रोजा रखा हुआ है ये बेचारा किधर जा रहा है उसको ले जाओ। तो ये वो कैफियत होती है जो उम्मत के अंदर, इल्म के लिए कोई जाता है, हो सकता है कि मेरे सामने से पैदल गुजर के आ रहा हो, हम नहीं उसको लेने जाएंगे बिठाएंगे कि चलो भाई आओ बैठो, तुम जो आज सीखोगे हमें ही फायदा होगा ना। तो जब कौमों का मिजाज ये बन जाता है कि पंप एंड शो और रस्म वाली नेकियां बहुत आम होने लगे, तो दीन की रूह चली जाती है। इसके बरक्स एक बंदा है मोमिन, बहुत बड़ा ज्यादा बारीक उसकी नजर होती है, वो अपनी नेकियों के मौके ढूंढता है, क्या ऐसी नेकी करूं जिस नेकी के बाद मेरा अजर बढ़ जाए, फिर उस नेकी के अंदर वो इतना हिस्सा डालता है कि उसका दिल चाहता है कि मैं करूं ना करूं लेकिन मेरा नामे अमाल जो है इस नेकी के साथ भरा हो। अरबों में हज होता था, हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने तो ये घर बनाया था, ये कैसे हो सकता है कि अरब कल्चर में हज ना हो, लिहाजा हज करते थे, लेकिन उसके अंदर मन माने तरीकों की बिदात शामिल की थी। उसमें एक बिदत क्या थी जिसका एक असर आज भी आपको दिखेगा, और वो क्या थी, कहते थे कि जब कोई हज की नीयत से निकला, आप इमेजिन करें ये हमारा घर है, हमने हज की नीयत की, हम निकले, नीचे गए सीढ़ियों में से, बस गए बाहर मेन डोर तक गए, एकदम याद आ गया ओह वो जैकेट तो ऊपर भूल गए, मिसाल है ना। और आपने देखा अक्सर हम कहीं भी जाएं तो चीजें तो भूलते हैं, एक दफा जा रहे हैं फिर ओ ये भी भूल गया, फोन भूल गया, ये वो भूल गए, अब जो ही घर की चौखट से निकल चुके थे ना बाहर गए, तो याद आता कि कोई चीज लानी है तो वापिस आके ले लो, कहते ना 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 हज की नीयत से गए थे तो अब ये बगैर हज किए वापिस आ रहेंगे तो बुरा शगुन है, नंबर 1 वजह। दूसरी क्या कहते थे कि हज के मौके पे सर पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, किसी चीज के साये से नहीं गुजरना, तो जब घर की चौखट के साये से गुजरेंगे तो गोया के ये तो हमने अपने सर को ढांक लिया। शिद्दत इंतहा पसंदी, पूरे सबक से आज आपको यही मिलेगा कि जब सलमान अमली तौर पे डाउनफॉल का शिकार होते हैं तो वो कहते हैं ना कि मच्छर निकल जाते हैं और वो फांस जो है वो यानी मच्छरों को वो पकड़ लेते हैं और बड़े बड़े ऊंट निकल जाते हैं, कि जाहिरदारी पे इतनी तवज्जो होती थी उनकी कि वो इस तरह के काम करते, फिर करते क्या, आना तो था जैकेट के बगैर मिसाल है जाना नहीं, फिर क्या करते इधर से नहीं आते पीछे से आते, यहां से आप इस घर को सोचे ना, इस होटल को सोचे, इस दीवार से सीधा सामने से कोई आ सकता है ना, नहीं इधर से नहीं, फिर इधर से, फिर पीछे से, ये जो सीढ़ी है ना वर्कर्स के आने की, उधर से जाके ऊपर से छत के रास्ते कूदते थे। इसका अल्लाह ने जिक्र कर दिया, वले सल बिर्रु बियंता तुल बुयूत बुयूत मिन जुहूरिहा, ये तो कोई नेकी की बात नहीं कि तुम घरों में उनकी पुश्त से जाओ, और इसको बड़ा फख्र समझते थे कि देखो हम कितने ज्यादा तकवा का इख्तियार रखते हैं, हम कितने मुहतात लोग हैं आज की जुबान में, कि वी आर सो मच केयरफुल कि हम अब इधर से नहीं जाते उधर से जाते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं ये तो कोई नेकी की बात ही नहीं है, ये तो बिगड़ी हुई बात है। इसी तरह एक और बिदत क्या थी कि जब कभी घर से निकलते दरवाजों से गुजरने की जरूरत पड़ती ना निकलते बल्कि पीछे से आते, यानी बिल्कुल आप कह लीजिए कि अपनी मर्जी के तौर तरीके उन्होंने हज के अंदर डाल दिए थे, जिससे आज हमारे यहाँ भी तो हज के साथ बहुत सारी बिदात आ चुकी है ना, यकीन करें अभी तो हम बड़े होके समझ आ गई, अल्लाह ने कुरान भी पढ़ा दिया, मेरे ये ख्याल में था कि जो बंदा हज के लिए जाता है उसको बादाम जरूर साथ लेके जाने चाहिए, मैंने खुद अपनी आंखों से बचपन से देखा है कि जब लोग हज के लिए जाते थे पहले दौर में तो रिश्तेदार मिलने आते थे ना तो किलो दो दो किलो बादाम छीले हुए देते थे, आपको किसी को याद है ये बात, क्यों करते थे आप मुझे समझ आती है, उस वक्त कहते होंगे इसका दिमाग तेज हो ये खाए इसने बड़ी मेहनत करनी है रियली, लेकिन एक रिचुअल बंधी हुई है, और ये भी मुझे पता है कि बचपन से जहन में है कि जब कोई हज पे जाए तो उसको जोड़ा जरूर देना होता है, ये तो आपको भी पता है माशाल्लाह। हाँ ये कुछ इस किस्म की चीजें, फिर ये भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ ये भी एक है कि जब हज पे जाएं तो फिर वापसी पे ससुराल और नंद और सास के लिए कोई ना कोई सोने की चीज भी जरूरी लानी चाहिए, और एक ये भी बहुत अच्छी रस्म और बिदत है लोगों में कि जब गो हज पे जाएंगे ना तो चूड़ियां जरूर बदलवा के नहीं लेनी होती हैं। ये इस किस्म की चीजें कि जिसमें दीन की असर रूह खत्म हो जाए, अल्लाह ताला कहता है छोड़ो, ये कोई दीन है तुम्हारा? ये तो जाहिरदारी है। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, बल्कि नेकी तो उसकी है जो कोई तकवा इख्तियार करे। यहां आप देखिए एकदम लफ्ज वलाकिन्नल बिर्र आ गया, तो आपको कौन सी आयत याद आई? थी उसके आखिर में आप देखिए क्या लफ्ज था, वोलाई कहुमुल मुत्तकून, वही लोग हैं जो वो सारे काम कर लेंगे, मना वना बिल्ला से लेके आखिर तक वही तकवा वाले हैं। यहाँ उसी को अल्लाह ताला ने दूसरे रंग में कह दिया, वला किन्नल बिर मन इत्तका, तक नेकी तो उसकी है जो तकवा लेकर आए। क्या पता चला कि असल तोहफा अगर हज से लेके आते हो ना तो तकवा का लाओ, जिस दिल से जाओ उससे वापिस ना आओ। मैं शायद पे आती तो मेरी एक बहुत अच्छी अम्मा, मतलब बहुत मोहब्बत करती थी, तो कहती थी मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो अपने बेटे की कहानी सुनाती होती थी, शहर में मशहूर था कि उनके बेटे हज के ग्रुप लेके जाते हैं, और कहती थी कि मेरा बेटा फकीर बन जाता है उस घर में जाके, इतनी खिदमत करता है अपने ग्रुप वालों की कि यहाँ रहते हुए कोई बंदा किसी दूसरे के ग्रुप में जाना ही नहीं पसंद करता। लेकिन कहती है कि पता है तुम्हें ये तब्दीली आई कैसे उसमें? कहती जैसे जवान लड़के होते ना ये ऐसा ही था, यानी कोई शरिया ऐप नहीं थे, लेकिन पान चा लिया, रात को दोस्तों में बैठना करना कराना, बिल्कुल खलंडरा सा ये लड़का था। शादी भी हो गई थी तो बस जिम्मेदारियां नहीं लेता था, लेकिन एक हज किया। कहती वो हज क्या इसने किया कि इसका दिल ही अल्लाह के साथ जुड़ गया, तो उसने नहीं कि क्या मैं हर साल लोगों को लेके आऊंगा, बिल्कुल पर्सनैलिटी बदल गई। हकीकत है अगर आपको अल्लाह हज नसीब करे, और अल्लाह करे उमरा हज अगर नहीं किया हुआ, आप जब उसकी लज्जत पाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है मेरे दिल में कि वैसे तो हमारा ख्याल किसी की तरफ इतना नहीं जाता, लेकिन जब हम किसी के घर गए हो तो हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं ना। आप यहाँ बैठे हैं, आपको बहन भाई याद आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन आप पाकिस्तान चली जाए, बैठी भाई के घर में हो, बैठी हो तो हर वक्त उनके ख्याल है ना, इनके बच्चे के। यकीन करें पास ना रहे तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है, फिक्र भी खत्म हो जाता है, उनके लिए दुआएं नहीं निकलती। जब आप उनके घर जाते हैं, उनके कोई मसले सुनते हैं, कोई उनके बच्चों को देखते हैं, तो फिर दिल से दुआएं भी निकलती हैं। तो जिस तरह हम किसी के घर जाते हैं तो उससे मोहब्बत होती है, उसका ख्याल है, इस तरह खाना काबा में जाकर, अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह की तरफ तवज्जो ज्यादा होती है। और हज क्या है ये तो आप इंशाल्लाह सुनेंगे, आगे जो मौजू चलता रहेगा इसलिए हम इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ लफ्ज तकवा पे बात करें कि तकवा है वो चीज जो इंसान को नेकियां करने की तौफीक भी देती है, और तकवा ही वो चीज है कि जिस जो मतलूब है। आप देखिए कि दिल किसी को नियम दिखा सकते हैं हमारा दिल कैसा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की निगाहों में। इसीलिए कहा वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, दरवाजों से आया करो घर में। असल में यहां इशारा है कि ढंग से काम करो, सीधे तरीके से काम करो, सवाल का जवाब देते हुए मौके से फायदा उठाते हुए बिल्कुल एक गलती की सलाह कर दी कि ये जो दीन के नाम पे तुम उल्टे सीधे काम करते हो ना वो ना करो। एक क्लिप दिखाया गया था और मैंने खुद भी देखा, कोई कब्र है किसी बाबा जी की, और लोग बाहर से जब आते हैं तो सीधे होते हैं, जो ही उस कब्र की हदूद यानी चार दीवारी के अंदर यानी जहां से कब्र नजर आनी शुरू होती है तो वो जानवरों की तरह, जैसे घोड़े नहीं होते दोनों पांव और हाथ भी लगा दें, तो इस तरह रींगते हुए बाबा जी की कब्र पे आते हैं। ख्याल क्या है कि खड़े रहेंगे तो गोया कि हम ऊंचे हो गए तो कब्र नीची है, तो ये बेअदबी है। इस किस्म की बातें मैंने खुद अपनी आंखों से हरम में देखा कि जब हम सही कर रहे थे सफा और मरवा की, तो वहां क्या देखा, एकदम जैसे बिल्कुल तड़फड़ाहट सी मच गई, घबराहट। क्या देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का हरम से वापस आ रहा है। अब आप मेरी बात को अगर इमेजिनेट कर सकते हैं तो कर लीजिए कि हरम से जब आप चक्कर लगा के बाबे सफा से भी आते हैं तो बस आप इधर आएंगे ना, तो वो किस तरह आ रहे थे, मुंह हरम की तरफ है, पीछना पीछा नहीं उसको करना, और यूं आ रहे थे, और जो लोग सफा और मरवा में सही कर रहे थे जहर उनसे टकरा भी रहे थे, पीछे उनको चल पीछे रहे हैं लेकिन देख आगे रहे। क्या है जी कि हमने हरम को पीछा नहीं दिखाना, ये नेकियां कौन लोग करते हैं आज हमारे यहाँ? नहीं, कुरान को पीछा ना दिखाओ, ये बात तो आप सबने बड़ों में देखी है ना कि कुरान पढ़ा हुआ है तो बैक ना हो, किबले की तरफ पाऊं ना हो, सुनी हुई है ना बातें। घर में एक अलमारी है, उसमें अगर ऊपर कुराने पाक रखा हुआ है तो उस अलमारी में सबसे इवन नीचे खाने में भी जूते रखे हैं तो ना रखो, जूते पहन के कुरान ना पढ़ो, ये सब जाहिरदारी है। और मैंने फील किया जितना जिसके अंदर दीन की रूह नहीं होती ना, उस जो अमल कर रहे होते हैं ना, वो कुरान को एक अपनी एक हैंडबुक के तौर पे यूज करते हैं। और जिन्होंने पकड़नी है ऐसे बड़े प्रोटोकॉल्स है, पहले वजू भी करेंगे, इत्र भी लगाएंगे, परफ्यूम भी लगाएंगे, उसको बाहर सिल्क के कवर में भी डालेंगे, उस पर गोटी भी लगा लेंगे, फिर बड़े प्यार से खोलेंगे, थोड़ी देर पड़ा फिर बंद करके रख दिया। यही फर्क है एक तबरुक और एक मैनुअल में। इस वीकेंड पे अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्स शुरू हुआ बर्लिन में, अगर आपने सुना तो सैटरडे का जो दर्स था यही टॉपिक था कि अगर मैं कुरान नहीं समझूंगी तो मैं क्या लूज करूंगी। 10 पॉइंट दिए उसमें, एक यही था कि कुरान का जो मकसद है नजूल है वो गौर व फिक्र है, तदब्बुर है। और गौर व फिक्र किस बात पे होता है जो बगैर देखे समझ आती है? ये तो नहीं हो सकता कि फ्रेंच का अखबार आपके सामने रखा है जो पढ़ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं आ रहे, और उस पर बैठ के गौर व फिक्र करें। तस्वीरों पे तो गौर कर लेंगे, लफ्जों पे नहीं करते। तो इस कुरान पे गौर व फिक्र कैसे करेंगे जब ये दिमाग में नहीं आता? नतीजा क्या है कि फिर कुछ जाहरी काम कर करके हम अपने आप को बहला लेते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डर जाओ ताकि तुम फलाह पाओ। तकवा मोमिन का ज़ादे रहा है। आपने रोजे के मसाइल में देखा या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सब आप बोले लअल्लकुम तत्तकून। रोजा तकवा सिखाता, नमाज तकवा सिखाती, हज भी तकवा सिखाता। बिन देखे रब के लिए इंसान इतनी मुशक्कतें सहे, इतनी घर बार छोड़ के वहां दो चार जोड़ों में इतने दिन रह जाना, क्या क्या रिचुअल्स हैं हज के, आगे जहां बात आएगी करेगी। तो यहां से हम सबको अपने तकवा को देखना है कि हम अपने आप को देखें कि कैसे है। और याद रखिए कि बाज लोग जाहिरी काम पे इतनी बहसें करते हैं कि अंदर की बात खत्म ही हो चुकी होती है। नमाज के हालिया पे इतनी बात करेंगे, उसके रिचुअल्स पे इतनी बात करेंगे, लेकिन रूहानियत खत्म हो जाती है। इसीलिए ताला ने यहां बस एक बात करके बात छोड़ दी कि उल्टे सीधे काम ना किया करो। मेरे और आपके लिए भी यही बात है। बस दफा आप देखिए कि हम नेकी के काम कर रहे होते हैं लेकिन हम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे होते। पता होता है कि इस काम के नतीजे में कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। नहीं, होश से काम कीजिए, समझदारी से काम कीजिए। हलफलाहट मचना तरफलाहट है, एक गिर रही है चीज, एक पड़ रही है, एक उठा रहे हैं, एक रख रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या हर घबराहट है। मोमिन के अंदर सुकून होता है, इत्मीनान, वही करूंगी जो हो सकता है, उतना ही करूंगी जितना हो सकता है करना। ठीक है, आप ठीक काम करते जाए, अल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि आपकी इस्तेदाद जो है वो खुद बहुत बढ़ा देगा। फिर इसके अंदर एक दो बातें और करके आगे चलते हैं, क्योंकि यहां ना की तो फिर आगे जाके मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ये लफ्ज अहिल्ला आया है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया चांद देखने की एक दुआ सिखाई है। आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, वैसे आपको दुआओं के सेशन में अलग से भी हम सिखाएंगे, लेकिन दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अहिल अलैना बिल अमनी वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ये तिर्मिजी की रिवायत है। इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह इस चांद को कर दे अमन वाला और अमान वाला, पीसफुल कर दे। यानी आज पहली का चांद निकला है, ये पूरा महीना मेरा अमन और चैन वाला हो। फिर वह सलामती व सलाम, सलामती वाला हो, पीसफुल हो, सुकून वाला हो। फिर हम चांद को मुखातिब करके कहते हैं कि रब्बी व रब्बुक अल्लाह, तेरा और मेरा रब अल्लाह। क्यों? कि कुछ लोग चांद को भी पूछते थे। तब से सलम ने फरमाया कि जो नया चांद देखकर ये दुआ मांग ले, पूरा महीना अल्लाह की तरफ से अमन में होगा। आप सब मुझे बताइए कितने लोग हैं जो इस सुन्नत पे अमल करते हैं? हाथ खड़ा करें। नया चांद देखकर दुआ मांगना रहले 10% लोग भी नहीं है। अब देखिए हम कैसे कह सकते हैं हमारे घरों में झगड़े हैं, कितने फितने हैं ना, आज हादसात हैं दुनिया में कितने हैं। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस अल्लाह के नबी ने दी हैं। तो अब आज से अपने लिए अमल लिखें कि जब भी कोई नया चांद दिखे, कब नया चांद दिखना है बाय द वे, तो पढ़ेंगे आज कौन सा देखने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे कि पहले दिन का तो हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, हिलाल में पहले दूसरे तीसरे सब दिनों का आ जाता है। जब पहली दफा आपकी नजर पड़े देखें, और नहीं पड़े तो अपने बेटे को देख के पढ़ लें कि ये भी तो मेरा चांद ही है। कई लोग अपने बच्चों को ही चांद कहते रहते हैं। तो बहरहाल यह कि ये एक छोटी सी सुन्नत है, इस पर अमल करना चाहिए। और इससे एक और बात पता चलती है कि अल्लाह कितना बड़ा होगा जो इतने बड़े चांद को कवर करके बैठा हुआ। कितना बड़ा चांद अल्लाह से मिलता है, अल्लाह की बात मानता है। अगर आप देखें वेबसाइट पे जाके जहाँ प्रेजेंटेशंस का लिंक है, तो आप उसमें देखिएगा चांद की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इस वक्त तारे हैं, हुकअप शायद हैं कि नहीं, लेकिन टाइम बचाने के लिए दिखा नहीं रही, लेकिन पूरे वो मराहल हैं जो चांद के हैं। अकल दंग रह जाती है, इतना बड़ा चांद अगर अल्लाह के हुक्म को मानता है, तो फिर मैं इतनी छोटी होके क्यों ना मानूं। अब इसके बाद मौजू पलटता है किस तरफ, किताल की तरफ, क्योंकि हज का जिक्र आगे आना है। तो फरमाए वह कातिलु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में किताल करो, लड़ाई करो, टू फाइट के मानों में। किन लोगों से? राजातों से नहीं, अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, उनसे लड़ो जो तुमसे किताल करते हैं। यहाँ पे वही बात जो शुरू से आपको चार लड़कियों वाली बता रही हूँ ना, कि सूरत बकरा में जो चार टॉपिक हैं, इबादात, मामलात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और किताल, यहाँ वो किताल का जिक्र है कि तुम्हें खाना काबा का हज करना है, वहां पे तो दुश्मन आए हुए हैं, तो तुम जैसे उन्होंने तुमसे लड़ाई करके तुमको निकाल दिया, अब तुम भी वही काम करो। यहाँ समझ लीजिए कि ये आयत और इससे अगली चंद आयतें ये सन 6 हिजरी में नाजिल हुई। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह बात आसान हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने पे मजबूर कर दिए गए, ये तो हम सब के लिए बात आम है। 6 साल हो गए थे आपको, जाहिर है कि मदरलैंड बंदे को याद आता है, अपना घर बार भी याद आता है, लेकिन वहां कब्जा था दुश्मनों का, जा नहीं सकते थे, इजाजत नहीं थी। ख्वाब के जरिए अल्लाह के नबी को दिखाया गया कि आप खाना काबा में गए हैं और आप उमरा कर रहे हैं, उस दौर का जैसे था रिवाज। नबी का ख्वाब वही होता है, अल्लाह के नबी ने लोगों को सुबह उठ के हुक्म दिया तैयारी करो, हम उमरा करेंगे। अब सहाबा के लिए ऐसे जैसे अब आप में से कोई 4-6 साल से अमेरिका, पाकिस्तान नहीं गया या इंडिया नहीं गया, जहां भी आप रहते हैं तो खुशी होगी ना सुन के। बड़े जोश के साथ पुरअमन तरीके से एहराम बांधे हुए, जो इस बात की निशानी है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा इरादा उमरे का है। कोई हथियार पास नहीं, हदी के जानवर साथ हैं, बिल्कुल कोई हालात ऐसे नहीं थे कि जिसको देखकर ये लगे कि आप शायद लड़ाई के मूड में गए हैं। आप लोग गए, लेकिन मक्का से बिल्कुल करीब के मुकाम पर हुदैबिया की जगह पे आपको रुकने पे मजबूर किया गया, और मक्का वालों ने अना का और ईगो का ये इशू बना लिया कि हम आपको अंदर आने नहीं देंगे। 10 बड़ी सख्त शराइत पे सुलह हुदैबिया हुई, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के नाम पे आप पढ़ के देखें, दिमाग खुल जाता है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान में, आपके पास पूरी सूरत सूरत अल फतह में उसका तذکرہ आएगा। किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि मुसलमानों को उमरा करने से रोक दिया गया। अगर उस वक्त मुसलमान तशद्दुद वाले होते, तशद्दुद परस्त होते, टेररिस्ट होते, जंगजू होते, खून के प्यासे होते, जो आज लोगों ने मुसलमानों को नाम दिए हुए हैं, और दुख की बात है कि कुछ मुसलमानों ने अपने जज्बातीपन से ये करके भी फिर दिखा दिया, तो नतीजा क्या निकलता कि उस वक्त वहां बहुत बड़ी जंग होती। लेकिन किसको पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, क्या उनका ईमान था, कितने पीस मेकर थे, कितना सुकून चाहते थे। बिल्कुल मंजिल पे पहुंचे, पर हमारी तरह तेज रफ्तार जहाजों पे नहीं गए थे, 500 मील का फासला ऊंटों और घोड़ों पे मदीना से तय करके आए थे, लेकिन सिर्फ इस डर से कि यहां लड़ाई ना हो, इनकी बात माने, आप हुदैबिया के मुकाम से वापस आ रहे हैं। अब आप इस नैरियो को ज़हन में रखें और आयत पढ़ के देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ातिलु फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीन युक़ातिलूनकुम, और किताल करो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो तुमसे किताल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तुमसे। हाँ देखो, वला तातदू, ज्यादती ना करना, हद से ना गुजरना, क्योंकि इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। इजाजत मिल रही है लड़ाई के जवाब में, लड़ाई सिर्फ उनसे जो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं, और इसके पीछे 13 और 6 लगा लीजिए कितना सब्र है। मक्का में लोग परसिक्यूट किए जाते थे, उनको आजमाइश का शिकार किया जाता था, लेकिन यही कहा गया कि फोई दी जाकुम, हाथ रोक के रो भी नहीं, अभी तुम थोड़े हो, अभी तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, अभी तुम्हारे अंदर वो पुख्तगी नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि तुम लड़ाई छेड़ लो और बाद में मार खाते रहो। लिहाजा नतीजा क्या निकलता कि वो ज्यादती करते। इसलिए अगली आयत को पढ़ेंगे ना, फिर ये पूरे पे आपके साथ इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि अल्लाह ताला दुश्मन से लड़ाई के मौके पे बात करते हुए कह रहे हैं वला तातदू, देखो ज्यादती ना करना। अब आप बताइए कि यहाँ दुश्मन से लड़ाई के जवाब में लड़ाई करते होकर ज्यादती ना करना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर इंस्ट्रक्शंस किताबों में मौजूद है। आप क्या कहा करते थे, किसी बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, जो अपने इबादत खानों में, गिरजों में, मंदिरों में जहां बैठे अपनी इबादत करें उनको नहीं छेड़ना, नहत्ते बेगुना शहरी जो अपने घरों में कामकाज करें उन पे हाथ नहीं उठाना, सिर्फ उनके साथ लड़ो तो तुम्हें मारने आगे। तो ठीक है, ये तो फितरत का असूल है, आप बच्चे को भी मारेंगे तो बच्चा भी दिफा करेगा ना। क्या ये फेयर है कि एक मुसलमान है उसको कोई मार दे तो वो कहती तुम मुझे मार ही लो क्योंकि मैं मुसलमान हूं, ये अक्ल का तकाज़ा है? क्या अपनी जान को बचाना लाजिम नहीं है? अपनी इज्जत को बचाना लाजिम नहीं? अपने माल को बचाना लाजिम नहीं है? बल्कि हदीस में आता है कि जब अपना माल बचाते हुए, जान बचाते हुए या इज्जत बचाते हुए मारा गया वो शहीद है। तो जब कोई ज्यादती करे तो फिर उसके सामने स्टैंड लो, इतनी बात। अब इसके बाद होगा क्या कि जब कोई किसी से ज्यादती करे, हाँ ज्यादती ये नहीं करनी कि अगर उसने तुम्हें एक हाथ से मारा है तो तुम दो हाथों से मार लो। वो एक शख्स है, मिसाल है कोई एक शख्स है, ए वो आके मार रहा है तो हम उसके गुस्से में जाके तो पीछे उसके घर में बैठे सारे लोगों को मार दो। जब हम मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स के बीच की झड़पें और फसादात और फुलां फुलां दो गिरोहों को मामले देखते हैं तो हम यही बातें सुनते हैं ना, उनके घरों का आग लगा दी, उनके कमरे में गए, ये कर दिया, वो कर दिया। इस्लाम कहते हैं इसकी इजाजत नहीं है, करो क्या? अब अगली आयत को बड़े गौर से सुनिएगा, इसमें वही ट्रिकी तर्जमा है, वक्त लू हूं और मारो उनको, कत्ल करो। टू किल का लफ्ज लिखिए इसके ऊपर, क्योंकि आप देखिए काफ के ऊपर जज्म आ रही है, लफ्जी वजाहत में बात हुई थी, हैसु सकिफ तुमोहुम इनको। अब आप देखिए ये किन की बात हो रही है, हैसु सकिफ तुमोहुम से क्या मुराद है? काफरों को जहां देखो मारना शुरू कर दो, एयरपोर्टों पे देखो, मॉल्स में देखो, नहीं, लिखिए इसके बाद के मैदाने जंग में पाओ। हम जब कुरान का टेक्स्ट सही नहीं समझते तो हम अपने ही कलाम को ठीक नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम्हें मारने की नीयत से, तुम्हारे साथ गलत मामला करने की नीयत से निकल आए हैं, फिर अब तुम भी इनको मारो, जाहरी बात है। ये कौन सा मामला होता है? जब दुश्मन आ गए। समझ लीजिए जंग दो किस्म की होती है, एक होती है डिफेंसिव वॉर, दिफाई जंग उर्दू में इसको हम बोलेंगे, अपना दिफा करना बचाना, और एक जंग होती है ऑफेंसिव वॉर, इकदामी जंग, खुद पहल करना। दो बातें समझ लें, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। डिफेंसिव वॉर क्या होती है कि दुश्मन खुद आया आपको मारने तो आप क्या करो, मुकाबला करो। यहां इसकी बात है, बात इतनी वाज है भाई, दुश्मन आपको मारने आ गया तो आप मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, स्माइल देंगे, नहीं, तुम हमें मार दो, हम कुछ नहीं आगे से कहेंगे। मच्छर को आप मारते हैं मच्छर उड़ जाता है, कॉकरोच को आप मारेंगे वो भाग जाता है, तो तुम खड़े रहो क्योंकि तुम मुसलमान हो। डज इट मेक एनी सेंस? ये तो टिट फॉर टैट है। हाँ इसमें भी ज्यादती नहीं करनी, ठीक है? तो कहा जब वो तुम्हें मारने की नीयत से निकले हैं ना, मैदान जंग में मिले तो तुम मारो। क्या कभी कोई फौजी या कोई कमांडर ऐसा होगा जो अपने फौजियों से कहे कि जहां तुमने दुश्मन देखा खबरदार उनको मारा दो, उनको देख के दुश्मन को सलाम करते रहो, इतनी देर में दुश्मन तुम्हें मार जाएगा। समझ आने वाली बात है ना, अकलमंद कौन सा होगा वो कहेगा कि दुश्मन तुम्हें मारे इससे पहले तुम उसको मार दो। तो यही बात इधर है, पहली बात। फिर दूसरी देखिए, वखरिजू हूं और निकालो इनको, मिन हाई सखरजूकुम, जहां से किधर से निकालने की बात है, मक्का से। कि इतना जुल्म कर दिया कि मुसलमानों का वहां रहना मुश्किल हो गया, तो अब तुम इनको वहां से निकालो। और ये कब कहा जा रहा है? जब उन्होंने हुदैबिया के मौके पे आपका रास्ता रोका। बात बस है, पहले 13 साल तो ये बात नहीं हुई, तो यही कह दिया कि अब तुम इनके साथ मामला करो, अल्लाह अगर ये तुम्हारे रास्ते में आते हैं तो फिर तुम इनको पकड़ो। और साथ ही कह दिया, वल फितना तो शद्द मिनल कत्ली, और फितना तो कत्ल से भी बढ़कर है। क्या मतलब होता क्या है? देखिए ये हिस्ट्री में भी था और आज भी यही है, हमें सबको मानना पड़ेगा कि जब भी कहीं कोई दूसरा मजहब वाला, कोई दूसरी जात वाला शख्स बड़े से बड़े जुर्म भी करते ना, ना मीडिया को हरकत होती है, ना लीडर्स को, और ना पब्लिसाइज वो बात होती है। जो ही मुसलमान के लफ्ज के साथ कोई बात आती है ना, सब उछालते हैं, इज इट ट्रू और नॉट? अच्छा ये ट्रू तो है, लेकिन इसकी वजह आगे हम पढ़ेंगे। आज हमारे अपने करतूत इतने बुरे हैं कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करता, बच्चा बच्चा हमें टेररिस्ट कहता है, मीडिया पे हमें बदनाम किया जाता है, जहां कोई गोली चलती है मुसलमान का नाम क्यों आता है? क्योंकि मुसलमान अपनी किताब को छोड़े हुए हैं। अल्लाह की मदद मुसलमान के साथ आती है, इस्लाम के साथ, और इस्लाम होता है अमल के साथ। जब हम मुसलमान अपने दीन पे अमल नहीं करते तो अल्लाह की मदद क्यों आए? नतीजा क्या होता है कि फिर मुसलमानों को जब दुश्मन मारते हैं, अल्लाह कहते हैं और मारो। याद रखिए अल्लाह की एक सुन्नत है, जब तक अल्लाह की प्यारी कौम, जब भी किसी नबी की, जिस तरह आज हम मान करते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी की उम्मती हैं, जब तक वो कौम अपनी किताब से जुड़ी रहती है, अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मुसलमानों का रोग डालते हैं। आप पढ़ेंगे जंगे, जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप खुद हैरान होंगे, सीरत ही पढ़ ले, मैं तो कहती हूँ इसका बेहतरीन तरीका यही है। जब मुसलमान अपनी किताब से कटते हैं, किताब को टुकड़ों में बांट देते हैं, ये हिस्सा ऐसे ही पढ़ लो, ये दुख पे पढ़ लो, ये बीमारी पे पढ़ लो, इसका वजीफा कर लो, जब मुसलमान किताब से कटते हैं तो अल्लाह दुश्मनों के दिल में डालता है कि इनको मारो। सही रिवायत में आता है कि हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह मैं जमीन पे हूं तो आसमान पे, मुझे कैसे पता चले कि तुमसे खुश है या नाराज है? किसी से भी मोहब्बत हो तो बंदा सोचता है ना कि पता नहीं वो मुझसे खुश है कि नहीं। तो मूसा अलैहि सलाम को चूंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत थी तो उन्होंने पूछा, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, कह मूसा अगर तुम देखो कि तुम्हारे ऊपर अच्छे लोग हुक्मरान मंदी की अलामत है, यानी जब अल्लाह किसी कौम से खुश होता है ना तो उनको गुड लीडर्स दे देता है, अच्छे लीडर्स, जानेसार, कुर्बानियां देने वाले, अपने आप को नहीं बल्कि मुल्क व मिल्लत को बनाने वाले। और कहा जब तुम पर बुरे लोग मुसल्लत कर दिए जाएं तो समझ लो कि मैं उनसे नाराज हूं। आज आपको लगता है अल्लाह हमसे खुश है कि नाराज है? और अल्लाह नाराज ऐसे नहीं होता, उसकी वजह होती है, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि आज तुम मुसलमान अगर इनके मारने के जवाब में आके इनके सामने खड़े होते हो तो ये इतना शोर मचाते हैं, हालांकि वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। यहां उस फितने को समझ जाए तो इंशाल्लाह बात बहुत आसान हो जाएगी। फितना कहते हैं परसिक्यूशन को, किसी को उसके दीन पर अमल करने से रोकना। हालात के तहत अगर हम आयतों को देखें तो मक्का के 13 साल परसिक्यूशन के थे, मजहबी इस्तेहसाल के थे, रिलीजियसली इस तरह से उन्होंने मुसलमानों को पीछे किया हुआ था कि लट डाउन करने ली बात थी, नमाज नहीं पढ़ सकते थे मुसलमान जाके बैतुल्ला में, सबर किया ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि आज इनके मारने के जवाब में अगर तुम मारने निकलते हो तो ये इतना शोर कर रहे हैं, तो ये जो पिछले 13 साल से मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। बीबी सुमैया की कहानी आप सुन चुके, जब मुसलमान हुई तो लोगों ने ऐसे तो नहीं छोड़ दिया, थी अबू जाहल के खाली किसी से ना, फिर बाप से डरता ना शोहर से ना आका से, जम गई। अबू जाहल ने इनको 2 ऊंटों से बांधा, एक पांव एक ऊंट से दूसरा दूसरे से, और दोनों ऊंटों को मुख्तलिफ सूरत में चलाया और जिस्म पर तीर मारा शर्मगाह पे, इनका जिस्म चीर गया था। बीबी सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि तुमने जान तो ले ली लेकिन ईमान तो नहीं लिया ना। बिलाल को रेत पे लिटाया जाता, तपती रेत पे उनके ऊपर पत्थर रख दिया जाता, अंगारे उनके जिस्म के ऊपर से खाल जो चर्बी पिघलती उससे बुझते थे, इंसान तो नहीं होता। ये क्या था? ये फितना था। तो अल्लाह कहते हैं बताओ जो तुमने फितने फैलाए हुए थे क्या ये बुरे? तुम मुसलमानों को उनके दीन पे अमल ही नहीं करना दे रहे। आज के दौर में देख ले, एक औरत का सिर्फ एक 10 इंच का टुकड़ा निकाब कितना छुपता है लोगों को, ये तुम्हारी बला से। तुम नंगे फिरो, तुम्हारा जिस्म दिखे छुपे कोई हर्ज नहीं, कोई नहीं बोलता। कोई एक गज का टुकड़ा लगा ले मुंह पे तो बड़ी दुख की बात है, बल फितना तो शद्दु मिनल कत्ल। तुम छोटी छोटी बातों को फितना बना के मुसलमानों को क्या समझते हो, बेवकूफ है? बेवकूफ तो नहीं होते वो, लेकिन सबर करते हैं। अल्लाह के नबी ने जिस चीज से लोगों को रोका था ना, वो एक्सप्लॉयटेशन थी। एक्सप्लॉयट नहीं करना, गार भी पिसते हैं और ईमानदार भी पिसते हैं। असल जो इस्लाम का मिजाज है ना, वो टकराव का नहीं है, ये समझ लें। टकराव क्या होता है? ऐसे कट 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 तुम्हारे सामने। इस्लाम का मिजाज अवॉइड करने का, तुम अपना रास्ता बदल लो। आप इमेजिन करें आप कहीं जा रहे हैं आपके रास्ते में पत्थर आ गया, क्या करेंगे? इधर से गुजरना है, गुजरे आपका अपना दामन टूट, राइट, आपकी गाड़ी को ठुकेगी, करो क्या? राइट और लेफ्ट देखो किधर रास्ता अच्छा है, मुड़ जाओ। 13 साल तक टू इवॉइड की पॉलिसी रखी। ये जो हिजरत की है ये क्या थी? चलो छोड़ो, तुम रहो इधर, हम जाते हैं, तुम संभालो अपना मक्का। ये सस्ता ना, कितनी मुश्किलें सहकर कर मुस्तफा सल्लम मक्का को छोड़कर मदीना में आए, क्योंकि तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, तुम कर लो। लेकिन उनको वो भी चैन नहीं आया, मदीना में पहुंच गया आपको मारने, तो आखिर एक बर्दाश्त की हद थी ना। तो लिहाजा कह दिया, वला तक तो कातिलुहुम इंदल मस्जिदिल हराम। देखो तुम पहल नहीं कर सकते मस्जिद हराम में लड़ाई की, मत तुम लड़ो उनसे मस्जिद हराम में। आप सब जानते हैं कि मस्जिद हराम का एरिया जो है, इधर जंग खून रेजी सब हराम है, धागा नहीं तोड़ सकते, तिनका नहीं तोड़ सकते। बाप का कातिल आपके सामने आ जाएगी। और ये मक्का वाले भी इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बिगड़े हुए थे लेकिन था तो उनके दिल में एहसास, तो खाना कबा की हदूद में वो लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने हुदैबिया के मुकाम पे मुसलमानों को रोककर खुद शह दी, होता तो कहता आज इनको करके दिखाते हैं। क्या समझा इन्होंने, बात होती। पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब आप ये पूरा वाकया, तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह के नबी में कितनी हिकमत थी, और उस वक्त का आपका सबर पता है मक्का की सूरत में तोहफे में मिल गया। मक्का 2 साल के अंदर फतह भी हो गया, खुद अपनी शरायत की जद में आ गए। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं तुम खुद पहल ना करो मस्जिद हराम में लड़ाई की, हाँ हत्ता युकातिलूकुम फी, यहां तक कि वो पहल ना कर दे तुमसे लड़ने की। बात वाजे, पता क्या चला कि तुमने पहल नहीं करनी। यहां आप देखिए कि डिफेंसिव वॉर कर सकते हो, ऑफेंसिव नहीं करनी, ये मतलब है कि पहल ना करो। हाँ फाइन कातलूकुम, अगर वो छेड़खानी करते हैं, वो तुमसे लड़ते हैं इसमें, किसमें, हरम की हद में, तो फिर फक्तलूहुम, फिर मारो। यानी हरम की हद में लड़ाई झगड़ा करने वाले की सजा मौत है, ये मतलब है इधर। वो पहल करेंगे तो फिर मारो, क्योंकि कजालिक जजाउल काफरीन, यही बदला है काफिरों का। जिसको अल्लाह के घर की हुर्मत की कोई कदर ना हो, जो अल्लाह के की जगहों को अपने लिए अब हलाल कर ले, तो क्या फिर उनको ऐसे छोड़ दो? नहीं। हाँ लेकिन फिर देखिए रास्ता खुला हुआ है, इन इन दहो, फिर भी अगर वो बाज आ जाए, किस चीज से? लिखिए, परसिक्वेशन से, फितने से, मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती से बाज आ जाए, फइन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी फिर तुमको वो माफी मांगते तो माफ कर दो। हाँ वकातिलूहुम, लड़ाई करो उनसे, हत्ता तकून फितनतुन, यहां तक के फितना न रहे। इस आयत 193 के आगे लीजिए, ये है ऑफेंसिव वॉर की दलील। ऊपर की आयत 191 डिफेंसिव, दुश्मन आ गया मुकाबला करो। यहां क्या कह रहे हैं कि दुश्मन आने वाला है, अब तुम पहले चले जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जंगें गज़वे खंदक तक जितनी थी, अब मैं आपको उलझाना नहीं चाहती नामों में और सालों में, ये सब डिफेंसिव वॉर थी। अल्लाह के नबी ने पहल कभी नहीं की, बैठे हुए अपने घर में सुकून से, लेकिन वो वहां से छोड़ के यहाँ आके आपसे लड़ाई करना चाह रहे हैं। चलो मक्का में तो उनका ही समझिए कि मदर लैंड थी, भी उनका मुल्क था, तो मदीना तो मुसलमानों का था। अल्लाह के नबी खामोशी से बैठे हैं, बदर से लेके खंदक तक की सब वॉर जो थी ये डिफेंसिव थी। मतलब ये है दूसरे लफ्जों में कि दुश्मन ने पहल की फिर मुसलमान निकले, ऑफकोर्स निकलना था, क्यों ना निकलते। लेकिन उसके बाद से लेके तबूक तक की सब जंगें ऑफेंसिव थी, क्योंकि ला तकूना फितना। खुलासा कर देती हूँ, इस्लाम को जंग पसंद नहीं है, इस्लाम पुरअमन मजहब है। इससे आपका इस्लाम का मिजाज खुद देख सकते हैं। अहदीस बेशुमार है कि मोमिन तो अपने हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देता, नेवर्स के साथ कितना अच्छा होता है, कहाँ वो जाके जंग करेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमानों को सताए, मारने आ जाए, तो फिर बेजिगरी से मुकाबला करो। कुछ बुजदिल नहीं होता मुसलमान, मौत से नहीं डरता, प्यार करता है, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवातन, जो अल्लाह के रास्ते में मरता है वो तो मरता ही नहीं, वो तो शहीद है। ठीक है, पहली सूरत। दूसरी सूरत क्या है कि कोई जंग में पहल तो नहीं कर रहा, लेकिन मुसलमानों से छेड़खानी कर रहा है। आप पढ़ेंगे गज़वे बनू नज़ीर में इन्होंने मुसलमान औरत को बरहना कर दिया था, और एक मुसलमान औरत की इज्जत खराब की, उसका कपड़ा ऐसे धागे से बांध दिया, जब उठी तो उसका तहबंद खुल गया और इस पे वो हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी को खबर मिली कि एक मुसलमान औरत की इज्जत पे हाथ पड़ा, आपने दुश्मन को चैलेंज कर दिया। तो लिहाजा दुश्मन जंग करे या मुसलमानों को रोके, देखिए आप किसी को रोक नहीं सकते, आज पूरी दुनिया में रिलीजियस आजादी है कि नहीं, तो मुसलमान पे क्यों नहीं? आप क्यों इन छोटी छोटी बातों पे मुसलमानों को चिड़चिड़ाते हैं? तो शुक्र करें कि आज के मुसलमान खुद ही नहीं अमल करते, सच्ची जो बात है खुद ही अमल नहीं करते, वरना आपकी ये छोटी छोटी बातें बेस बना के आज कितनी पाबंदियां लगवाई जाती हैं कि ये ना करें वो ये ना करें। कल एक परसों में कोई क्लिप ये सुन रहे थे तो मेरे भी कान में आवाज पड़ी, तो हम ये हंस रहे थे कि तकलीफ किसको है, आपको क्या लगे कौन क्या कर रहा है। एयरपोर्ट्स पे लोग गंदी हरकतें करें या जानवरों वाले काम सड़कों पे चलते लोग करें, नो प्रॉब्लम। ऐसी औरतें जो मासूम बच्चों की आंखों से मासूमियत खत्म कर दे रोज उनकी गंदी तस्वीरें देख देख के, कोई परवाह ही नहीं है किसी को, है किसी को परवाह? कोई कपड़े पहने कोई ना पहने, who cares? कोई चर्च में जाए मस्जिद में जाए कोई मसला नहीं किसी को। जब मुसलमान अपने दीन की को बात करने लगे तो परेशान। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम क्या करो, फितने को खत्म करो। दुनिया में आजादी चाहिए ना, कुफर को भी आजादी है, अल्लाह नहीं रोकता जो मर्जी करे कोई, लेकिन मुसलमान को भी आजादी होनी चाहिए। इसलिए कवा यकून दीन लिल्लाह, इसको समझेंगे तो बस सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे के समझाऊंगी कि यकून दीन लिल्लाह ही कैसे। किसी भी मुल्क का जहन में लाइए तसव्वुर, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्वे, लंदन, अमेरिका, कनाडा, छोटा या बड़ा, वेस्टर्न ईस्टर्न कोई फर्क नहीं, हर मुल्क का एक कानून होता है, उसका एक झंडा होता है, उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं। हर मुल्क में किसका कानून चलता है? उस मुल्क का ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लॉ होगा, इंडिया में इंडियन लॉ होगा, अमेरिका में अमेरिकन लॉ होगा, ठीक है ना, एक जनरल बात है। अब जिस मुल्क में जिसका लॉ है वही चलेगा ना। अब आप इससे समझें, कोई दूसरा मुल्क आके उसको फोर्स करे कि तुम अपना कानून छोड़ दो और हमारा मानो, तो हम कहेंगे इसने कब्जा कर लिया। बाज दफा मुल्क दूसरे मुल्कों पे जो हमले करते हैं वो यही होते हैं ना। अब आप सोचिए कि जिस तरह ये छोटे छोटे मुल्क है ना दुनिया में 100-200 मुल्क, ये पूरा ग्लोब जिसको आप बिल्कुल एक राउंड द क्लॉक देखते हैं, ये किसका है? लिल्लाहि मा फिस समावाती वल अर्ध। ये पूरी दुनिया का आप इस वक्त एक एक मुल्क समझे, किसका है? मुल्क उस बियदिहिल मुल्क, सूरह मुल्क में कहा। अब ये पूरी दुनिया है तो ये अल्लाह का मुल्क है, तो इस पूरी दुनिया पे किसका निजाम चलना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दुनिया में इस वक्त जितनी कुफर की कंट्रीज हैं, जिसको हम कहते हैं कि काफिर मुल्क या डिसबिलीवर या इस्लाम नहीं, वो क्या हुआ हुआ बल्कि अल्लाह के मुल्क पर कब्जा किया कुफर ने, बात वजह। तो इस्लाम अल्लाह ताला क्या चाहता है? पूरी दुनिया पे झंडे अल्लाह के नाम के लग जाए, बात वजह। ये तो अल्लाह अल हलीम है, हिल्म है, उसमें सबूर है कि वो देख रहे लोगों को अपने मुकाबले पे गलत काम करते फिर भी कुछ नहीं कहता, बल्कि उनको और तरक्की मिलती है। तो पूरी दुनिया पे ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा जिस दिन लग जाएगा पूरी दुनिया में अमन होगा। और आपको पता कि ये होगा कब होगा? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनका नाम लेके आज क्रिश्चियन बहके हुए हैं और हम मुसलमान होते हुए उनका इंतजार, दुनिया में आएंगे जितने क्रिश्चियंस हैं उस वक्त जो होंगे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमान होंगे, और सिर्फ ज्यूस उनके मुकाबले पे होंगे, हजरत ईसा उनके साथ मुकाबला करेंगे और उनको मारेंगे। और दज्जाल निकलेगा जो कि ज्यूस का लीडर है, और हजरत ईसा अलैहि सलाम के हाथों उसका खत्म होगा। जब ये सब क़यामत की अलामतें शुरू होंगी उसके बाद पूरी दुनिया में अमन होगा। इतनी बरकत होगी आसमान से, हदीस में आता है कि एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा, एक अनार दरख्त का जो है वो पूरी फैमिली को पूरा होगा। ये जो आज दुनिया में बेसकूनी और परेशानी और इकोनॉमिक डिसऑर्डर और ये डूब गई करेंसी वो डूब गई, ये सब फितना है। पढ़ेंगे आप तीसरे पारे में इकोनॉमिक डिसऑर्डर, पूरी पूरी कौमें आज गुलाम हुई हुई हैं। यहां से लेकर सूरह बकरा कैंट तक पढ़ लें, आपको पूरे दीन का ए टू जी समझ आ जाएगा। और खोल के अल्लाह बताते हैं, हमारा दीन वो है भी नहीं कि जो छुपाया जाए, कि खाए अल्लाह ये बात ना पता लग जाए, नहीं ये तो जरूर पता चले کیونکہ یہ ٹرو ہے. کس طرح آج پوری نسلوں کو مسلمانوں کی اور کافروں کی سب کو چند لوگوں نے ہاتھوں میں لیا ہوا سود کے جال میں پھنسا کے, اور کسی طرح کیا کیا اور حالات پیدا کیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے کام جو ہیں نہ کرو, فائن انتہو فلا عدوانا. ہاں اگر وہ باز آ جائیں کس بات سے, یہ پرسیکویشن سے, مسلمانوں کو کچھ نہ کہ امن سے اپنے ایک ملک میں ایک نان مسلم ملک بنا ہوا رہتا ہے, چھوڑو چھیڑو نہیں ان کو پھر. ہاں اللہ علی الظالمین, مگر ظالموں پہ زیادتی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں ایک وہ بھی دور تھا 12-13 سال تک حکم تھا کف ہوئی دی یعقوب, رکھو ہاتھ روکے رکھے, ہاتھ نہ اٹھاؤ مارے کھاؤ. اصل میں تربیت ہو رہی تھی صحابہ کرام کی, جو مشکلوں میں ایمان بنتا ہے وہ عام دنوں میں تو نہیں بن سکتا. اب سب باہر آ گئے, آپ پھر لڑو, اب فتنوں کے جواب دو. اب اتنی بات کلیئر ہے, خلاصہ سمجھ آ گیا بات کا. اب آگے دیکھیے آیت 194 کو. الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا. مطلب کیا ہے کہ حرمت والے مہینے میں دوسرا بندہ بھی اگر چڑھائی نہ کرے, لڑائی نہ کرے, تو تم بھی اس مہینے کی حرمت کو جانو. ہاں والحرمات قصاص, اور حرمتوں کے اندر بھی بدلہ ہے, لیکن حرمتوں میں بھی بدلہ ہے لیکن کیا ہو, آیت پڑھ لیں پھر اس کی بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. فمن اعتدى علیکم, پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے, فاعتدوا علیہ, تم بھی اس پر زیادتی کرو. کتنی؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, جتنی کے زیادتی انہوں نے تم پر کی. اب یہ ایک نیا ٹاپک آپ کے لیے, کہ آج کا سبق تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں, اس میں خیر ہے. اب دیکھیے کہ سال کے 12 مہینے ہیں, ٹھیک ہے, 12 میں سے 4 مہینے کسی کو آتے ہیں؟ بولیے. محرم, ذیقعد, ذلحج اور محرم, لکھ لیجئے. ذیقعد ابھی گزرا ریسنٹلی, ذلحج ابھی گزرا, محرم آنے والا ہے, ٹھیک ہے. ذیقعد, ذلحج اور محرم 3 کنٹینیوس, اور چوتھا رجب. شروع سے جب سے دنیا بنی ہے نا, یہ 4 مہینے حرمت والے تھے. حرمت کا کیا مطلب ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو مکہ والے اور عرب والے جو تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے. حتیٰ کہ عرب کے حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی آمد کے موقع پر کہ صرف ان 4 مہینوں میں تجارت کر سکتے تھے لوگ, کیونکہ ان 4 مہینوں کے علاوہ ان کو امید ہی نہیں ہوتی تھی کہ جو قافلے تجارت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں یہ خیر سے پہنچیں گے. راستوں میں قافلوں کو لوٹ لیتے تھے, لوٹیرے تھے یہ لوگ, کتنی جہالت تھی. اب ہوتا کہ ان 4 مہینوں میں نہ تو مسلمان کبھی بھی لڑائی کرتے تھے نہ کافر کرتے تھے, یہ اتنی سی بات ہے. ایک خاص واقعہ ہوا تھا, اس کا ادھر تذکرہ نہیں ہے, وہ واقعہ آگے آنا ہے اس لیے وہاں کروں گی. ایک اس قسم کی بات ہو گئی کہ مسلمانوں کو شہ دی ان لوگوں نے اور کسی بات پہ غصہ دلایا. مسلمانوں کا قافلہ تھا, مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک کافر مارا گیا. اب یہ تو بات ہوتی ہے جنگوں میں, یہ تو وہ یوز ٹو تھے. اللہ کا کرنا ہے اگلے مہینے کا مسلمانوں کو نہیں پتا تھا, اور وہ چاند تھا حرمت والے مہینے کا. بس اس بات کو اتنی شہ دی مکہ والوں نے کہ شور مچا دیا, دیکھو دیکھو یہ مسلمان تو حرمت کے مہینوں میں لڑائی کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مارتے ہو تو کوئی لڑائی والا مہینہ نہیں, جب تم پہل کرتے ہو تو کچھ نہیں. بس ادھر اتنی بات سمجھ لیں کہ حرمت کے مہینوں میں لڑائی نہیں ہوگی, لیکن اگر کوئی دشمن مسلمانوں کو مارنے نکلتا تو کیا مسلمان بیٹھے رہے؟ پھر تو ایک ہی سال حرمت کے مہینے میں سارے مسلمان ملک ختم ہو جائیں گے. دشمن کو جو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں آگے سے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس چیز کا لحاظ رکھے گا تو تم بھی لحاظ کرو گے, اور جب کوئی لحاظ نہیں کرتا تو تم بھی نہ کرو. ہاں وَعْلَمَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. غور کریں, قتال, لڑائی, جھگڑا اور بات ہے تقویٰ کی. کتنا مشکل ہوتا ہے لڑائی میں خود پہ قابو پانا. جب غصہ آتا ہے نا بندے کو تو پھر یہ نہیں یاد رہتا کہ اللہ کے لیے غصہ یا اپنے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ کسی کافر سے لڑ رہے تھے, آپ نے بالکل اس کو پکڑ لیا, وہ نیچے تھا, حضرت علی اس پہ تھے اور تھوکا. आपके मुंह पे उसका थूक पड़ा। अब आप सोचिए कोई जुनूनी, कोई दीवाना, कोई ऐसा शख्स होता तो वो तो पकड़ के मार देता। हजरत अली ने उसको छोड़ दिया, आजाद कर दिया। कहने लगा कि भाई ये क्या, अब आपने मेरे पे काबू पा लिया। तो आप कहा इसलिए कि अब अगर मैं तुझे मारता तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह के नाम पे मार रहा हूं या अपने ऊपर थूक पड़ने के गुस्से में मार रहा हूं। ऐसे थे सहाबा करम, और कितना उनके अंदर जज्बा था, कितना ज्यादा वो अपने जज्बात पे काबू पाते। हमारी अपने भाई बहन से लड़ाई हो जाए तो हमारी जुबान नहीं रुकती। शौहर बीवी बातें प्यार मोहब्बत से खा रहे हैं पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए उसमें तलाक तक बात आ जाती है। और यहाँ अल्लाह कह रहे हैं दुश्मन से बात कर रहे हो, दुश्मन से लड़ाई कर रहे हो, वहां कोई मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वत्तकुल्लाह, देखो अल्लाह से डरो, देखो अल्लाह की मदद तब आएगी तकवा के साथ जब होगे। तो यहां तक आप देखिए कि क्या बात चली थी, हज की बात थी। हज से किताल की क्यों आई बताइए शाबाश, क्योंकि मक्का काफिरों के कब्जे में था, किताल के जरिए आजाद कराना था। अब जहां किताल होगा यानी अल्लाह के दीन को गालिब किया जाएगा तो किस चीज की जरूरत होगी, पैसे की, हथियार लेने हैं, माल चाहिए है। तो अगली आयत पे जरा गौर फरमाइए, आयत 195, वन फिकू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को हलाकत में ना डालो। करो क्या, वाहसिनो, और हुसन पैदा करो अपने अंदर, एहसान की रविश अख्तियार करो, अपने दीन का खूबसूरत नमूना पेश करो लोगों को। और इन नमूनों को पसंद करता है। यहां से माल के खर्च करने की बात हो गई। याद रखिए जिस वक्त अल्लाह के दीन को रुपए पैसे की जरूरत हो, और उस वक्त वो लोग जो जान से और माल से कुर्बानी दे सके लेकिन जी चुरा ले, तो वो खुद को हलाकत में डालते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौके पे आम अपील कर दी कि इस वक्त तो इस्लाम को पैनी पैनी की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन रोमन्स उस वक्त की सुपर पावर मुसलमानों पे हमले की तैयारियां कर रही है। अब उस वक्त जिन लोगों ने अपने माल समेट के रख लिए कि नहीं ये बच्चों के काम आएंगे, ये बुढ़ापे के काम आएंगे, इससे तो भी घर बनाना है, अभी इससे तो हमने फलां गाड़ी खरीदनी है तो पे ऑफ करना है, अल्लाह कहते हैं कि वो सब ने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। ये मुहावरा भी है अरबी जुबान में, ये मुहावरे के तौर पर जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, खुद अपनी क्या कहते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, इसी मुहावरे को अरबी में कहते हैं ला तुल कुबेदी को मिला तहलुका। यहां से क्या पता चलता है कि जब मुसलमान दीन पे खर्च नहीं करते तो वो हलाक करते हैं। वजह क्या, दुश्मन को साफ पता चल जाता है इन्होंने शादियों पे खर्च करना है, इन्होंने मंगनियों पे खर्च करना है, इन्होंने कपड़े पहनने पे खर्च करना है, जूतों पे खर्च करना है, बड़े बड़े घर बनाने हैं, लेकिन हम जाएंगे दुश्मनी करें इनके ऊपर, इन्होंने दीन पे कोई नहीं खर्च करना। यकीन करें इस वक्त उम्मते मुस्लिमा की मुंह बोलती है तस्वीर है, माने के ना माने। इस जब ये मामला हो जाता है ना तो अल्लाह की मदद उस कौम से उठ जाती है। यहां इशारा दे दिया कि माल बुरा नहीं, तुम्हें मुबारक तुम्हारा माल, अल्लाह ने क्या करना है, अल्लाह को क्या परवाह। अब सोचे उसने सोना तो पहाड़ों में रखा हुआ है, खोल के सामने रख दे, क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है दीन के लिए पैसा देना लेना, वो तो उसने दिया, वो तो मुझे और आपको देख रहा है कि तुम कितने पानी में हो। और चीखें निकल जाती हैं, यकीन करें चीखें निकल जाती हैं इंसानों की दीन के नाम पे माल खर्च करने में। आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तीसरे पारे का तो शुरू का टॉपिक ही माल है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कौम दुश्मन को शह देती है, आओ हमें मारो, क्योंकि हम कॉन्सर्ट्स पे पैसे लगाएंगे, हम डीजेस को पैसे देंगे, और मस्जिदों मदरसों में हम वो इस का ज़कात 2.5% तोड़ फोड़ के दे देंगे, और उस पर भी हम बड़े खुश होते हैं कि ज़कात तो हम देते हैं ना। देखिए नोट किसके लिए निकलता है, मैं अक्सर सोचती हूँ इन चीजों को, गौर भी करती हूँ, दुनिया का काम कैसे होता है। आप कहीं भी बाहर जाए, सफर से आ जाई हो, आप भी यही जाते आते होंगे तो कितना कुछ देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, पानी से ऐसे से चलता है। एक तो आज हमारे अंदर तकवा की दौलत नहीं है, सच्ची जो बात है दीन के काम में, और दूसरी बात है तकवा की दौलत है तो दुनियावी माल की दौलत कोई नहीं। मुसलमान देते ही अपनी खरीन है उतार के, उतरन देते हैं दीन के नाम पे, तो कहाँ से दीन को दीन कहाँ बनतेगा। दुश्मन ताक रहा होता है कि ये मुसलमान अपने दीन पे खर्च करते हैं कि नहीं करते। इन चल आज मैं सिर्फ खुलासा कर रही हूँ ताकि आज हम इन आयतों को पूरा करें। कल आपको इसमें अगर मौका मिला, वक्त ने इजाजत दी, तो कुछ चीजें ऐड करवाऊंगी कि क्या वो दौर था और क्या आज का दौर है। सांप बन के बैठे होते हैं हम अपने खजानों पे और दिल हमारा कह रहा होता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ होता है, नजर कमजोर होती है, रोते ही रहते हैं, तड़पते हैं। नतीजा क्या होता है कि दीन के काम कैसे होते हैं, सब आप जैसे इस माहौल में बैठ के दीन नहीं सीखते, सबको नसीब नहीं है ऐसी जगह, और कोई ऐसी कर ले तो लोगों को शक पड़ने लगता है कि ये होता कहाँ से, खर्चे कहाँ से उठते हैं, कौन
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
मेरे घर में रहमत आई, मेरे दिल पे ये कुरान का नज़ूल होगा तो मुसलमान साफ सुथरा होता है, तहारत है, इसलिए अपने अंदर हुसन पैदा करना बड़ी खूबसूरत एक हदीस है। उस हदीस को पूछते थे, इंसानी रूप में नबी सल्लम के पास आए और सवाल पूछ पूछ के अल्लाह के नबी से जवाब लेकर दीन सिखाया, तो उसमें एक सवाल था इब्नि अनिल एहसान, अल्लाह के नबी मुझे पता है एहसान क्या होता है। ये मोहसिन है ना, तो आप भी तो चाहते हैं ना कि आप एहसान सीखें, तो आपने क्या कहा, ताबुदुल्लाह, ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो, का अन्नक तरा, वो कि तुम उसको देख रहे हो, फलम तकुन तरा हो, और अगर तुम उसको देख नहीं पा रहे, फैन हो या राख, वो तो तुम्हें देख रहा है। फरमाया ये है एहसान। तो फिर एहसान क्या है दूसरा एंगल, कि बंदा इबादत करे तो उसको ऐसे लगे मैं रब को अपने सामने देख रहा हूं, नमाज पढ़ते हुए ऐसे लगे कि अल्लाह तआला से बातें की हैं, कुरान पढ़ते हैं तो ऐसे लगे कि अल्लाह को सुनाई है बातें, अल्लाह तआला से दुआ है कि हमारा दिल खोल दे, बहुत जरूरत है। फिर उसी वाक्य पे कमेंट है, वातिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, पूरा करो हज और उमरा अल्लाह के लिए। पीछे बात की ना कि हुदैबिया के मुकाम पे आए थे, روک لیے گئے تو واپس چلے گئے نا. شرط کہتی کہ اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی اور عمرہ کریں گے. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
احسان یہی لفظ ہیں جو اس میں ہا سواد الف را الف ہا سواد را یعنی اب آگے نہیں جا رہے تو احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک جانور ذبح کر دو یہ کفارہ ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب لیے گئے تو صحابہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جو جانور ان کو ذبح کر دو کیونکہ اس وقت آپ ساتھ لے کر آئے تھے. صحابہ کو اتنا شوق لگا تھا صدمہ تھا انہوں نے نہیں کیا. اللہ کے نبی کے لیے یہ بات اتنی زیادہ بڑی تھی کہ میں نے کچھ کہا ہے اور یہ نہیں کر رہے. جس کا آپ کہیں کہ آپ کے اوپر ایک قسم کا یہ ایک بہت بڑا تکلیف عمل تھا. آپ اپنے حجرے میں آئے بی بی حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی جو حضرت محترمہ تھی. اور اچھی بیویاں ایسے دکھی وقت میں شوہروں کو سہارا دیتی ہیں. میں اللہ کے نبی فکر نہ کریں یہ بہت اچھے ساتھی ہیں اصل میں صدمے میں ہے جن کا دل ہی نہیں قبول کر رہا. ہم اتنی قریب آ کے عمرے کے وقت کریں کہ آپ جا کے اپنا احرام کھولیں آپ اپنا کام شروع کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور کہا اچھا اللہ کے نبی نے جا کے بارے احرام کھولا اپنا بال پاس میں رکھے بس صحابہ پھر برداشت نہیں کر سکے کہ نبی یہ کام کر رہے تم ہم کیوں نہ کریں. کہا اتنی جلدی سے اپنے احرام کھول کے اپنے بالوں کو کاٹنے لگے جیسے لگتا تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں گے. تو گویا کہ پھر وہاں اس سب حدی کے جانور جو تھے ذبح کر دیے گئے. ہاں لا تحلق رؤوسكم اب نہ تم اپنے بالوں کو منڈواؤ حتى يبلغ الحج محله جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے. کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ عمرے کے رچولس ہوتے ہیں نا مرد جب جاتے ہیں احرام کر لیتے ہیں پھر جا کے صفا مروا کے صحیح کرتے ہیں پھر بال کٹواتے ہیں یہ ایک عمرے میں ہونا تھا. اب عمرے میں جانے سے روک دیے گئے تو کیا کرو اپنے جانور وہیں ذبح کر دو اور اس کے ذبح ہونے کے بعد پھر اپنے بال کاٹو. یعنی ریچول سب کچھ وہی کرنا ہے. اور دکھ کی بات بیت اللہ کی محبت میں گئے وہاں نہیں جانے دیا طواف اچھا لگتا ہے وہ نہیں کرنے دیا لیکن جو چیزیں نفس پہ بول دیں لگے میرا خوبصورت ہیئر اسٹائل کٹے گا کہاں کاٹو قربانی کاٹنی پڑے چلو اگلے سال لے آئیں گے کہیں اس کو کاٹو. یہ اللہ کی سنت تم دیکھو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میرے راستے میں کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر حج عمرے سے روک دیا گیا قربانی کے جانور بھیجے اور ان جانوروں کو ذبح بھی کہاں کرنا ہوتا ہے حرم کی حدود میں جا کے. بس اگر خدا نہ حسن یا لندن سے جائیں اور روک لیے جائیں واپس آنا پڑے کسی وجہ سے تو پھر ہم حرم کی حد میں کس کو کہیں گے کہ ہمارا جانور ذبح کرو. جب وہ ذبح ہونے کی خبر مل جائے پھر اپنے بالوں کو کاٹنا. ٹھیک ہے یہ سارے مسائل آپ کتاب الحج میں پڑھیں گے اس لیے گھبرائے نا یہ مسائل ہیں. لیکن صرف بالوں کے نیچے سے نوک کاٹتی ہیں جو ٹرم کرنا ہوتا ہے نا اس کی بات ہے. تو گویا کہ ادھر پتا چلا کہ ان کو نہیں روکیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے فمن کان ام ان کو مریض یہ پوری آیت اصل میں حج کی فقہی باتیں ہیں جو آپ انشاءاللہ کتاب الحج میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن جہاں اس موقع کی مناسبت سے یہاں بات آ گئی کہ جب ان کو روک دیا گیا اس کے بعد وہ جانور جب اپنی جگہ پہنچ گئے کاٹ دیے پھر اس کے بعد ہوگا. ہاں ایک ایکسیپشن کیا ہے فمن کان ام ان کو مریدن اور جو کہ تم میں سے مریض ہو نمبر ایک بیمار ہو او بھی عزم میں راسی ہی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یعنی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. اب یہ حج کے اندر آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹتے لیکن کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو جائے. کعب بن اجرا ایک صحابی تھے کعب کعبہ ہوتا ہے نا ویسے ہی کعب ہے. کعب بن اجرا صحابی تھے کہتے ہیں کہ جب حدیبیہ کے سفر میں گیا اب آپ سوچیے کہاں مدینہ سے نکلے مکہ کوئی شاور نہیں تھے وہاں کچھ نہیں گرمی تھی پسینے آئے کہتے میرے سر میں جوئیں پڑ گئیں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ وہ میرے ماتھے پہ چلتی تھی. اب احرام ہے کیا کرے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یاد کر ایک ہی لادے کے بال کٹ دو. تب جب ان کے بال کٹنے پڑے تو پھر اس کا کیا؟ فدیۃ من صیام. نمبر ایک روزہ رکھا جائے. یعنی اب آج کوئی حج کے لیے گیا ہوا ہے, احرام کی حالت میں اگر اس کو بال کاٹنے پڑ گئے یا کٹ کے کسی وجہ سے, تو ایک روزہ او صدقہ یا صدقہ دے, یا تھرڈ آپشن کیا ہے, او نسک یا قربانی دے. یعنی حدی کے جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے تو فدیہ دے دو. کمی رہ گئی اس کے کفارے کے لیے, تلافی کے لیے کفارہ دے دو, روزہ صدقہ یا قربانی کی صورت میں. ٹھیک ہے, اور یہ آگے آپ بات پڑھیں گے. اور اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں. جنایا ہوتی ہے ایک چیز, بس لکھ لیں, ابھی آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو. یعنی یہ دم دینا اور ایک کے بدلے میں دوسری چیز ہے. اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے یا ایک بکری کی قربانی دی جاتی ہے. اب کیا کہو, فائز آمین تم, پر جب تم امن میں ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ سیدھے سیدھے بیت اللہ پہنچ گئے. فمن تمت قبل عمرہ تیل الحج, پھر جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک, فمس تئی سر من الحج, تو جو بھی قربانی کر سکتا ہے میسر ہو وہ کرے. یعنی پہلی بات ہی روک لیے گئے, اب کہہ کے نہیں اب روکے نہیں, نارمل حالات کی باتیں ہیں. تو کیا کروں کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر سکتے ہیں. یا چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنے کو منحوس یا گناہ سمجھتے تھے. اب آپ سوچیے, آپ لندن میں ہیں, آپ کو حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج ہی کے دینا ہے. پہلے ایک دفعہ جائیں یہاں سے عمرہ کر کے واپس آئیں, پھر واپس دوبارہ جائیں تو حج کریں, بہت مشکل تھا نا. ایک وہاں رہنے والا بندہ تو یہ کر سکتا ہے, باہر والا نہیں. یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہوتا کیا تھا کہ حج کے لیے عموماً شوال, ذیقعد اور ذوالحج کے مہینوں میں احرام باندھتے تھے, اور صرف عمرہ جو تھا رجب کے مہینے میں کرتے تھے. یہ بھی کوئی بدعت تھی جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے کر لی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, دین محمدی میں آسانی ہے, ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لو. اب اس کی آج کے دور میں دو سوچتے ہیں, سمجھیے گا. ایک وہی ہے جس کو آج کے دور میں ہم سب کرتے ہیں, یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہاں جا کے ایک عمرہ کیا جاتا ہے, پھر عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے, اس کی پابندیوں سے آزاد ہے, پھر بیچ میں ایک ہفتہ دس دن جس کے جتنے ہوتے ہیں وہ رہتا ہے, پھر سات تاریخ کو ذوالحج کی دوبارہ احرام باندھ کے سات آٹھ نو شام تشریق تک باندھ کے. جو ریچولز ہیں آپ نے کیا ہوا حج تو پتا ہوں گے, نہیں کیا تو پھر ضرورت نہیں بتا رہے ہیں کہ جب کریں گے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, آج ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ احرام باندھیں, پھر عمرہ کریں, بال کٹوائیں, احرام کھول دیں, پھر ایام تشریق تک دوبارہ باندھیں. اس حج کو حج تمتو کہتے ہیں. اس میں جانور وہاں سے خریدنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ حج ہی کرتے ہیں, اور یہ افضل ہے. لیکن ایک دوسرا طریقہ کیا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کا, گھر سے احرام باندھ کے. گھر سے بنائیے کہ میقات سے پہلے باندھ لیا, احرام باندھا, عمرہ کیا, پھر احرام نہیں کھولنا. اسی احرام میں پھر حج کے وہ سارے دن گزار کے اور پھر بعد میں سر منڈوانا ہے اور قربانی کرنا ہے. اور اس میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا نا وہ یہی تھا. اس کو حج قران کہتے ہیں. قرن قرین کیا ہوتا ہے؟ ساتھ بیٹھے. جیسے اس وقت آپ دو قرین ہیں, آپ دو قرین ہیں, جڑی ہوئی چیز. ٹھیک ہے, تو اس میں حج اور عمرہ جڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے خود ایسے ہی کیا تھا, لیکن حضرت علی کو دوسرے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی حج تمتو کرتا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک تیسری قسم ہے حج کی, اور آپ کو کل دکھا دیں گے انشاءاللہ یا اگلے سبقوں کے ساتھ ایک تھوڑا سا پریزنٹیشن, تو آپ سمجھ بھی جائیں گے. ایک ایسا حج بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر عمرہ نہیں کرتے, ڈائریکٹ وہاں رہنے والے لوگ سات تاریخ احرام پہنتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, اس کو حج افراد کہتے ہیں. تو حج کی کتنی قسمیں؟ حج تمتو کیا ہے؟ دونوں کا احرام الگ الگ, بیچ میں خالی دن بھی ملتے ہیں, اور جانور وہیں سے لے کے ذبح کرتے ہیں. سمپل. حج قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام اور قربانی ساتھ. اگر یہ ہو سوچیے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسرا حج کون سے؟ اس میں عمرہ نہیں ہے, جسٹ وہاں کے نیٹو جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں, بس اسی دن میں گئے اور قربانی کر کے آ گئے. تو گویا کہ یہ حج افراد ہے. اور اس طرح سے حج قران اور تمتع جو کرتے ہیں نا ان کے لیے قربانی لازم ہے, حج افراد والوں کے لیے لازمی ہے, کیونکہ وہاں جو رہتا بندہ ہو سکتا ہے فون ہی نہ کرتا ہو تو وہ صرف حج کرے گا اور ختم. اور جو حج قران اور تمتع اس میں کہتے ہیں جو قربانی دی جاتی ہے یہ دم شکر ہے, شکر کے نام پہ قربانی کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں لے کے آیا. اور ایک امام ہے وہ کہتے ہیں یہ دم جبر ہے, یہ مجبوری کا دار ہے, یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے. آخری بات ہے اور اس پہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. تملم جیت اب جیجے نہ پائے, یہاں اس کے اوپر ہیڈنگ دے لیں کہ حج میں قربانی لازم ہے لیکن کوئی نہ دے سکے اس کا کفارہ کیا ہے. تملم جیت کیا نہ پائے قربانی کا جانور تو کیا کرے, فسیام تو روزے رکھے. کتنے؟ ثلاثۃ ایام فی الحج, تین روزے حج کے دنوں میں. سب اتن اذا رجعتم, اور سات روزے جب تم واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے؟ تمن فرد سوری یہ کتنے ہو گئے؟ تل کا اشرت ان کا ملا, یہ دس پورے ہو گئے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ نیتی بات سمجھے کہ جو حج تمتع اور قران کرے اور قربانی نہ دے سکے. ویسے تو آپ پتا نا کہ قربانی فرض نہیں ہے ادھر رہتے ہوئے, ایک گھر سے ایک بھی کر لے پوری فیملی کی ہو گئی, لیکن شوہر بیوی دونوں گئے ہیں حج کے اوپر تو دونوں کو الگ الگ قربانی کرنی ہے. کسی وجہ سے نہ کر سکے تو دس روزے رکھ لیں, تین روزے حج کے دنوں میں, یعنی آف کورس دس دن حج کا دن چھوڑ کر گیارہ بارہ تیرہ میں سے کچھ دنوں میں رکھ کے پھر باقی دنوں میں سات روزے گھر آ کے رکھے تو یہ کفارہ ہے حج میں قربانی نہ کر سکنے کا. ٹھیک ہے, آخری بات, ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. دیکھیں یہ جو قربانی کی شرط ہے نا یہ صرف دور سے جانے والوں کے لیے, لیکن یہ رعایت یعنی یہ قربانی کرنے کا حکم یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنے کی رعایت صرف اس کے لیے ہے جس کے گھر والے وہاں نہ رہتے ہوں دور سے آ رہا ہوں. جو مکہ کی حدود میں رہتا ہے نا اس کو پھر ایک سفر میں ایک ہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, واتقوا اللہ, کتنی دفعہ آیا ہے, چوتھی دفعہ شاید اس ایک رکوع میں آ رہا ہے, واتقوا اللہ, اللہ سے حج کرو, قربانیاں کرو, جہاد کرو, روزے رکھو, نیت ایک ہے کہ تمہیں اللہ کا قرب پیدا ہو. وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور خوب جان لو کہ اللہ سخت عذاب. بات کریں گے تھوڑی سی مزید اگر ان آیتوں میں کچھ رہ گیا, اور ویسے اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ حج کے ناطے سے بہت خوبصورت دعائیں آ رہی. کل کا جو سبق ہے نا یہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے. حج کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, کل زیادہ بات ہوگی. آج تو ایک قسم کا چار مختلف ٹاپکس کا خلاصہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ یہاں سے آگے پھر بات ہوگی. سبحان اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ ایک رسالہ تھا یہ جہاں پہ کل ہم لوگ تھے, تو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری کلاس مکمل ہو گئی ہے اور آپ لوگ کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی ہے, اور مزید ٹائم آپ کا نہیں لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ابھی اسی وقت وائنڈ اپ کریں گے, اس کا جو ریکیپ وغیرہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے تھوڑا بہت. ٹھیک ہے سسٹرز, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.